4 जनवरी शनिवार बीबीसी इंडिया बोल सुनिए आदर्श राठौर से। बच्चों की मौत पर सरकारें क्यों नहीं पसीजती, कभी गोरखपुर कभी कोटा कभी मुजफ्फरपुर तो कभी पश्चिम बंगाल। सरकार अशोक गहलोत की हो या योगी आदित्यनाथ की, बच्चों की मौत हो जाने के बाद भी क्यों नहीं जागती हैं सरकारें। इस बार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार ब्रजेश मिश्र से। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के मिलिट्री कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस का अंतिम संस्कार जुलूस बगदाद में निकाला गया। इन दोनों की मौत शुक्रवार को अमरीकी हवाई हमले में हुई थी। इस हमले ने अमरीका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को कासिम सुलेमानी के घर जाकर संवेदना जताई। उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि सुलेमानी की मौत की कीमत अमरीका को चुकानी पड़ेगी। उन्हें लगा था कि अगर वो सुलेमानी को मार देंगे तो उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। उन्होंने गलती की है, मेरा मतलब है ये एक कूटनीतिक गलती है। वो देखेंगे कि अब उनके लिए आने वाले दिन कितने मुसीबत भरे होने वाले हैं। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि चीन के वुहान शहर में रहस्यमयी वायरल निमोनिया फैलने के बाद उन्होंने अपना इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। WHO के मुताबिक वो करीब 40 की संख्या में मामलों पर नज़र बनाए हुए था, लेकिन उनका मानना है कि चीन इस मुश्किल से निपटने में सक्षम था। चीनी अधिकारियों ने संक्रमण के कई स्रोतों को खारिज कर दिया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा और सामान्य श्वसन रोग शामिल हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि अभी हालात और बुरे होंगे। हालांकि कुछ इलाकों से दमकल कर्मियों को हटा लिया गया है जहां भीषण आग की वजह से तूफान जैसी स्थिति बन रही है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के करीब 3,000 जवानों को मदद के लिए भेजने की घोषणा की थी।
Today we have committed up to $20 million to lease 4 extra planes to fulfill that request and to meet any anticipated future.
आज हम $20 million की मदद जारी कर रहे हैं, जिससे आग बुझाने के लिए 4 अतिरिक्त प्लेन भेजे जा सकें और भविष्य में किसी मांग को पूरा किया जा सके। इसमें लॉन्ग रेंज फिक्स विंग 10S और 36,000 लीटर क्षमता वाले दो और मीडियम रेंज फिक्स विंग के साथ बड़े एयर टैंक वाले दो प्लेन जिसमें 11,000 लीटर की क्षमता होगी शामिल किए जाएंगे। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के शब्द। चीन ने हांगकांग के साथ संबंधों को लेकर आधिकारिक इंचार्ज को पद से हटा दिया है। यह फैसला हांगकांग में चीन के खिलाफ बीते 6 महीनों से हो रहे प्रदर्शनों के बाद लिया गया है। कुछ हफ्तों से इस बात की चर्चा तेज थी कि वांग शीमिन को उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि हालात काबू करने की उनकी कोशिशों से चीन खुश नहीं था। वांग की जगह पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी नेता लियो ह्योनिंग ने ली है। बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में एक रोड सेफ्टी ग्रुप का कहना है कि साल 2019 में देश में बढ़े सड़क हादसों और मौतें चिंता का विषय हैं। अपनी हालिया रिपोर्ट में संगठन ने कहा कि सड़क हादसों में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जो साल 2018 के आंकड़ों से 20% ज़्यादा है। इसके अलावा करीब 7,000 लोग जख्मी हुए हैं। साल 2018 में राजधानी ढाका में एक हादसे में 2 छात्रों की मौतों के बाद बड़े स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। स्पेन के सोशलिस्ट नेता पेड्रो सांचेज ने कई महीनों से चल रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए संसद के निचले सदन में सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। नवंबर में हुए चुनाव में सांचेज को बहुमत नहीं मिला था। सरकार बनाने के लिए लेफ्ट विंग से डील के बावजूद उन्हें एक क्षेत्रीय दल के समर्थन की जरूरत है। इस सप्ताह की शुरुआत में कैटालोनिया की सबसे बड़ी अलगाववादी पार्टी ERC ने उन्हें अंतिम वोट में सहयोग की पुष्टि की थी, मगर अभी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में, मैं हूं आदर्श राठौर। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1800-102-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट, इंटेंसिव केयर और सांस की बीमारियों से जूझने वाले बच्चों के इलाज में एक्सपर्ट डॉक्टर धीरेन गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत है।
नमस्कार
श्रोताओं, चर्चा शुरू करने से पहले विषय आपको एक बार फिर से बता दें कि बच्चों की मौत पर सरकारें आखिर क्यों नहीं पसीजतीं। कभी गोरखपुर, कभी कोटा, कभी मुजफ्फरपुर, तो कभी पश्चिम बंगाल। सरकार किसी की भी हो, अस्पतालों से बड़ी संख्या में बच्चों की मौतों की खबरें आती रहती हैं। जब मामला तूल पकड़ता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। विपक्षी सत्ताधारी पार्टी पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, भले ही पहले उनकी ही सरकार रही हो और उस दौरान भी ऐसा हुआ हो। सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाती है, जबकि खुद विपक्ष में रहकर वो भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा साल 2018 के गोरखपुर में हुआ, जब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होने लगी। बीते साल जब बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौतें हुई, तब भी यही हुआ। अब कोटा में भी यही हो रहा है। राजस्थान के कोटा में अब तक मरने वाले बच्चों की संख्या 100 पार कर गई है। इससे पहले के कार्यक्रम में श्रोताओं की टिप्पणियों को शामिल करें, डॉक्टर धीरेन आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिलसिला जो है वो थमता नहीं है। एक तरफ बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती चली जाती है, आंकड़ा बढ़ता चला जाता है, राजनीति होती रहती है और पूरे देश में बहस भी खड़ी हो जाती है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे हॉस्पिटल से ये खबरें आती हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्या वजह है?
मेरा मेडिकल साइंस से जो वास्ता है ना, 1987 में शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 33 साल हो गए। गवर्नमेंट में काम किया, प्राइवेट में काम किया, गवर्नमेंट दिल्ली में काम किया और प्राइवेट इस समय इंस्टीट्यूशन में जो टॉप लेवल पे जो सुविधाएं दे सकता है कोई भी हॉस्पिटल, उस लेवल पे काम किया
जी।
तो अगर मैं सारा आंकलन करूं, जब आपने बोला कि ऐसे वाले टॉपिक पे, तो मैंने आजकल की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने पूरा फीडबैक लिया कि कहाँ पर हम लोग लैग करते हैं, क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ये डेथ, ये तो मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्चुअल में देखेंगे तो ये डेथ्स हो रही हैं। बेसिक प्रॉब्लम इंडिया की है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पिछले 70 सालों से। गवर्नमेंट ने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो इन्वेस्ट भी किया वो मनी आपको मालूम है कि करप्शन से डिसिपेट हो गया
जी।
तो अगर हम मेरे से आप प्रैक्टिकली पूछोगे तो प्रॉब्लम है सबसे पुअर मेंटेनेंस में। इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं लेकिन इक्विपमेंट की रखरखाव ही नहीं है, काम ही नहीं चलता। सेकेंडली, इक्विपमेंट को चलाने वाले स्किल वर्कर्स नहीं है। यही डॉक्टर्स, अगर हम ब्लेम देखें कि पब्लिक पे है या वहाँ के स्टाफ पे या डॉक्टर्स पे, अगर देखें यही डॉक्टर्स विदेश में जाके इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, इतनी अच्छी इनकी मतलब अगर आप देखें यूएस में, यूके में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुख्यतः अगर मेन कॉज हमारे यहाँ पुअर रेफरल सिस्टम, हमारे यहाँ गाँव में अगर कोई बच्चा सीरियस या बीमार होता है, अगर हम वहीं पे उसका इलाज कर लें प्राइमरी लेवल पे, तो हम काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब जैसे ही वो पुअर देर से रेफरल होते हैं, देर से हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पे सुविधाएं ना होने के कारण भी, प्लस रेफरल देर से होना, ये मुख्य कारण है जिनके कारण कोटा जैसे हॉस्पिटल्स में ऑल ऑफ सडन डेथ दिखती हैं
जी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, हमारे श्रोता क्या कहते हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और आपको क्या लगता है कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, आप अपनी राय दें जी।
हेलो
जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
नमस्कार सर, मैं अमोद कुमार शर्मा, नेचुआ जलालपुर, गोपालगंज, बिहार से सर।
जी अमोद
जी, सर मेरा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल किलिंग हो रही है बच्चों को
जी। आपको ऐसा क्यों लगता है?
मुझे सर ऐसा लगता है कि बुनियादी रूप से कहीं सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो चिकित्सा को, वर्तमान चिकित्सा प्रणाली को चाहिए, वैसी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हम 21वीं सदी की बात करते हैं और हमारे पास चिकित्सक सुविधाएं जो है वो 16वीं शताब्दी से भी गई गुजरी हैं।
जी आमोदी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता है जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें प्लीज।
हेलो
जी।
हेलो सर जी, मैं पुंसद से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर जी।
हेलो सर जी। जी आपका स्वागत है बीबीसी पर।
हाँ, ये राजस्थान सरकार की संवेदनाहीन जो जवाबदार पना है, ये जवाबदारी नहीं ले समझते। जब तक के 200-400 मौतें हो जाती है इनकी, तब तक के इनके समझ में नहीं आता कि एक्चुअल क्या हो रहा है। और बच्चों बोले तो बहुत इन्फेंट है, वो बच्चों बोले तो जन्मने वाले हैं अभी तुरंत, इनके लिए बहुत बड़ी केयर की जरूरत है। तो इन्होंने कुछ भी बोले तो संवेदना बाजू में रखते हुए, पॉलिटिक्स बाजू में रखते हुए जरा काम करना चाहिए सर, ऐसी मेरी राय है सर।
जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और श्रोता है, जल्दी से उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी
हेलो।
जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
नमस्कार, मैं नवादा जिला के रुपाओ गांव से बोल रहा हूँ।
जी
बिहार में है।
जी जी बिल्कुल, अपना नाम बताइए।
जहाँ तक बात है सरकार की सचेत होने की, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जब सचेत हो जाएगी तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, समझे ना
जी।
उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए सरकार सचेत होना ही नहीं चाहती।
चलिए शुक्रिया, ये हमारे श्रोता है नवादा से, इनका कहना है कि इस मामले में राजनीति है। कुछ और श्रोताओं का भी डॉक्टर साहब ये कहना है कि इस मामले में राजनीति होती है। उनका इशारा है कि राजनीति की इच्छा शक्ति भी नहीं है, कि जो एक हेल्थ केयर की तरफ जो ध्यान दिया जाना है उस पर उतना वो तवज्जो देते नहीं है।
ये तो बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट की विल पावर ही नहीं है। ये इस गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, इस सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, मीन्स चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो।
और हर राज्य में इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही
हैं। और ये हर राज्य में ही प्रॉब्लम है। अगर हम इंडिया में ही लें, हिंदुस्तान में अगर हम लें, केरला की बात करें, केरला में मॉर्टेलिटी रेट क्यों है? लोग पढ़े लिखे हैं और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो प्राइमरी लेवल पर टैकल हो जाता है
जी।
हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल पे टैकल नहीं होता, लेट रेफरल होता है, और जहाँ रेफर होके जाता है वहाँ पे सुविधाएं नहीं है और विल पावर ही नहीं है, और वहाँ से आगे सिस्टम नहीं बना हुआ। मीन्स प्राइमरी लेवल पे सिस्टम नहीं है और टर्शियरी लेवल, दोनों लैकिंग है
जी। जब 2018 में यूपी के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें हुई थी, तो बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे मौके पर गई थी। उन्होंने वहां पर अस्पतालों का जायज़ा लिया था, डॉक्टरों से भी बात की थी, और जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई थी उन परिवारों से भी बात की थी। अभी वो कोटा में हैं, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फ़ोन पर। प्रियंका
जी, जी
जब आप मुजफ्फरपुर गई और उससे पहले जब आप गोरखपुर में थी, तो आपने क्या पाया कि कहाँ पे ये समस्या कहाँ से उभरती है? ये
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इग्नोरेंस है इस चीज को लेकर ना। जैसे हम कोटा में जो हुआ उसको लेकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और सब एक रोष है, रेज है, जो बहुत जायज भी है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम उसको एक बिग पिक्चर में रखकर देखें तो ये मालूम चलेगा कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट एक बहुत बड़ा मसला है कंट्री में। केरला को छोड़कर सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम रैम्पेंट है, जिसमें यूपी बहुत, मतलब अगर फिगर्स को देखें, लैंसेट की स्टडी, यूनिसेफ की जो स्टडी है जिसमें बताया गया, 2015 की स्टडी थी, अभी भी कमोबेश वही हालत है, जिसमें ये बताया गया, फैक्ट्स जो फिगर्स हैं, रिपोर्ट्स, रिसर्च जो कहती हैं, उनमें ये बताया गया है कि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। वो चीजें, वो फिगर्स हैं जो यूपी में सबसे नंबर, मतलब यूपी का जो फिगर है उसमें सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे वहां मरते हैं। कोटा में भी ये सिलसिला पिछले साल भी ऐसे फिगर्स थे, ये आज इस बार की का नई घटना नहीं है जो अभी कोटा में हुई है, और एकदम सिमिलर पैटर्न है। मतलब जैसे अगर हम गोरखपुर में देखें तो वहां पे एक हमारे पास एक चीज थी, एक टेंजिबल चीज थी जिसपे हम पिन डाउन कर सकते थे कि इंसेफेलाइटिस है। हमने जब मुजफ्फरपुर की बात हुई तो वहां भी हम पिन डाउन कर सकते थे, हालांकि लीची और उसके बीच में घूम रहे थे कि इंसेफेलाइटिस है, लीची है, लेकिन फिर भी एक रोग का नाम था। जब हम कोटा में आते हैं तो हमारे सामने वो बड़ा सवाल आता है जिससे अब हम मुंह नहीं छिपा सकते, वो बड़ा सवाल कि चाइल्ड मोर्टालिटी एक बहुत नुआंस बहुत बहुपरतीय विषय है जिसको इतना सरलीकृत तरीके से आप नहीं समझ सकते। चाइल्ड मोर्टालिटी इस वजह से हो रही है अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स है। यानी कि गाँव जो होता है, गाँव में जब पहले प्राइमरी छोटा अस्पताल है जहाँ पर पहला पोर्ट ऑफ कॉल है जहाँ पर मरीज जाएगा बच्चे को लेकर दाखिल, वो वहाँ पे पेडियाट्रिशियंस और वो लोग मौजूद नहीं है डॉक्टर्स की। अगर आप कम्युनिटी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो भी फंक्शन नहीं कर रहा है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। फिर जब तक बच्चा वहाँ पहुंचता है बहुत क्रिटिकल हालत में होता है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थ्रेड है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि औरतें जो बच्चे पैदा जो कर रही हैं उनकी उम्र क्या है, कम है, कुपोषित है, बच्चे कुपोषित बहुत कम वजन के पैदा हो रहे हैं और घर में डिलीवरीज हो रही है अभी बहुत ज्यादा, चाइल्ड केयर नहीं मिल पा रही है इमिडिएट लेवल पे, ये सारे मसले। क्योंकि एक टेंजिबल रोग का नाम आपके पास कोटा के लिए नहीं है।
जी बिल्कुल, यानी कि प्रियंका आप कह रही है कि साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है उसके साथ साथ जागरूकता की भी कमी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर साहब।
हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ प्रियंका जी से, बट जब हम बात शब्दों की शब्द यूज करते हैं कि गवर्नमेंट गांव के लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड कभी भी डॉक्टर्स नहीं होते हैं, हमेशा हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर जो बिल्कुल ही उन घरों के पास रहते हैं जहां पे बच्चे बीमार पड़ते हैं
जी,
वहां से वो उस बीमारी को पकड़ते हैं। एक स्पार्क होती है, एक छोटी सी बीमारी, उसको आग नहीं बनने देते, जब आग बन जाती है तब आप रेफर करते हो, वो लेट हो जाते हैं। तो हमारी जो हमें क्या चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए जो एक सस्ता चीप सिस्टम हो जो लोकल लेवल पे काम करे और वो रेफर अर्ली रेफर करे जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हो। डॉक्टर्स वहीं पे अवेलेबल होंगे जहाँ पे सुविधाएं होंगी डॉक्टर के रहने की।
अगर डॉक्टर डॉक्टर के होने से काम नहीं चलता, डॉक्टर के पास वो सुविधाएं भी होनी चाहिए।
अगर आप मैंने बाहर काम किया हुआ है, वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है जिसको डॉक्टर्स बहुत लेट फील्ड में आते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी एंटर करेंगे तो डॉक्टर सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले नर्सिस टेक केयर ऑफ पेशेंट्स होती हैं। सो आई थिंक एक सिस्टम हमें चाहिए
जी। चलिए श्रोताओं की बात भी शामिल करते हैं जी। अपना नाम बताएं, अपनी बात रखें, एक बार श्रोताओं को विषय हम फिर से बता दें। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों की मौत की खबर आती है तो उसके बाद सरकारें आखिर क्यों नहीं जगती हैं जी। Hello? बताएं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
डीके परमार मेरा नाम है सर
जी।
मैं इक्कीसवीं बार आपके मुकाबले हो रहा हूं सर
जी।
सर यहाँ हम ग्लोबल हंगर में हमारा स्थान 102वां है, यानी हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन से भी पीछे है। हमारा अनाज सड़ रहा है। गोरखपुर, कोटा में, मुजफ्फरपुर में लीची ऊपर ठिकरा फोड़ा, कोटा में बच्चे 107 बच्चे मर गए आज की तारीख में, तो प्रशासन की निष्फलता ही कहा जा सकता है। और गोरखपुर में जो हादसा हुआ था 17 को, उसमें ऑक्सीजन का ठिकरा डॉक्टर फकील खान पर फेंका फोड़ा गया। हर बात से ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर की मजबूरी समझनी चाहिए। डॉक्टर का ऊपर ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। डॉक्टर स्टाफ ना हो तो डॉक्टर क्या करे, सुविधा ना हो तो डॉक्टर क्या करे।
शुक्रिया परमार जी।
लिटी पर
जी 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 परमार जी, एक और श्रोता को शामिल कर लेते हैं, आपकी बात हम तक पहुंच गई है, शुक्रिया जी। अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, बनासकांठा जी, मैं वास्ता भाई पटेल बोलता हूँ
जी। जी स्वागत है आपका, बताएं।
हाँ जी, हाँ जी, और वसी वधारा हुआ है देश में
जी,
कुपोषण होता है
जी। जी
कुपोषण होता है और राजकीय लाभ लेता है। हाजी साहब
जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता है हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस विषय पे उनका क्या कहना है कि आखिर सरकारों का दिल क्यों नहीं पसीजता लगातार बच्चों की मौत होने के बावजूद। जी
हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
हेलो, नायर
जी। नायर जी बताएं।
क्योंकि बच्चा बोले तो उसको बोल नहीं सकते, माँ बाप को इतना समझना मांगते, वो मैच्योर होना मांगते, वो होता नहीं, उसको एजुकेशन नहीं है। और अपन सरकार के बारे में बोल के क्या फायदा है, डॉक्टर के बारे में बोल के क्या फायदा है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया तो वो दवा बराबर कैसा देना है वो भी मालूम नहीं, ऐसा माँ बाप कहते हैं, वो किसका गलती है सर।
जी बहुत शुक्रिया। नायर साहब ने एक पॉइंट उठाया है, डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि जो माता पिता हैं कम एजुकेटेड हैं, तो एक तो पहले उनको पता नहीं चलता कि बच्चे को दिक्कत क्या है या दिक्कत है भी, फिर बाद में डॉक्टर अगर उनको बताते हैं कि ये दवा लेनी है तो फिर वो भी सही से नहीं दे पाते और बहुत मामले बिगड़ते हैं। आपका क्या नज़रिया?
उन्होंने बहुत ही उपयुक्त बात उठाई, इसमें हेल्थ एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और हेल्थ एजुकेशन आप बेसिक लेवल पे ही होगी। जैसे ही पेशेंट बीमार पड़ा, अगर उसके माँ बाप को बोल दें कि ये लूज मोशंस हो रहे हैं और इसको पानी पिलाना है, एक सिंपल सी चीज़ है, 99% डिजीज़ आप वहीं पर रोक लेते, वो बच्चा आगे बीमारी लेके नहीं जाएगा
जी।
अगर हम उस लेवल पर टैकल नहीं करेंगे, सीरियस होके उस हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है
जी,
तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और यही कॉम्प्लिकेटेड केस जब टर्शरी लेवल पे दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स में भी आएगा तो फिर भी आपकी 10-15% डेथ रेट होगा। आप बात मेरी समझ रहे हैं?
बिल्कुल।
तो ओवरऑल कहने का मतलब है हेल्थ एजुकेशन मेजर पार्ट होता है, मेडिसिन का माइनर पार्ट होता है मैक्सिमम डिजीजेस में।
डॉक्टर साहब प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो ये बच्चे मरे थे तो उनके परिजनों से भी बात की थी, तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए माता पिता में, आपने क्या पाया?
अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा कमी है, मतलब अवेयरनेस बच्चे को लेकर जो है वो तो है ही नियोनेटल डेथ में, और बच्चा पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अवेयरनेस की कमी होती है कि मतलब किस किन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। बच्चे अंडरवेट बहुत पैदा होते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन ट्रेट है जो मैंने जो पूरा गोरखपुर अंचल है जिसमें कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर और हमारा ये पूरा जो देवरिया पूरा इलाका जो मैंने ट्रैवल किया था, उसके बाद मुजफ्फरपुर की जब बात आई बिहार में वहां पे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे शहरिया ट्राइबल्स की एक बहुत बड़ी संख्या है कोटा के आसपास जिसके बहुत बड़ी तादाद में मरीज आए हैं
जी,
उन्हीं उनके कैजुअलिटीज भी उन परिवारों में बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है पूरे प्रोसेस में, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज कंसीव्ड वहां से लेकर डिलीवरी तक और उसके जो पोस्ट डिलीवरी केयर है उसमें, जब बच्चा तुरंत पैदा होता है एक महीने से पहले नियोनेटल है, उसके बाद पेडियाट्रिक हो जाता है, वो पूरी प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। उनको मालूम ही नहीं है उन्हें कैसे हैंडल करना है। और ये की बात है कि जो सरकारी रेगुलेशंस हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पेडियाट्रिशियन मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे भी होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे तो बड़ा एक सेटअप है जो रिकमेंडेड है, खासतौर से जब गोरखपुर की पूरी घटना हुई उसके बाद तो उस पूरे अंचल में मैंडेटरी कर दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में छोटे छोटे जो पीकू है पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट और नीको जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके एक एक दो दो बिस्तर वहां पे, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ये सब कुछ अब इतने साल जब हल्ला मचा तो गोरखपुर वहां पे होना शुरू हो गया है। मतलब यू कैन नॉट से, आप अपनी जिम्मेदारी वेट ऐसे नहीं कर सकते कि हमने मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो डॉक्टर्स होंगे ही नहीं, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते कि ये पूरा सिस्टम काम करे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्पताल जो पूरा 3 लेयर का लैडर है ये काम ही नहीं कर रहा है, और फिर जब बहुत क्रिटिकल स्टेज में मेडिकल कॉलेज पे लोग पहुंचते हैं और जब तक बहुत हालत खराब हो चुकी होती है। अभी भी आज मैंने आज की आपको ताजा हालात अपने श्रोताओं को बता दूं, अभी आधे घंटे पहले मैं यहाँ के ICU वार्ड से आ रही हूँ जहाँ पर मतलब औरतें भर्ती हैं, वहां पर मीडिया की एंट्री बैन है, बहुत लड़ झगड़ के मैं अंदर गई, वहां पर एक जो व्यक्ति थे सरकारी सिक्योरिटी का जो पूरा इंचार्ज है हॉस्पिटल का गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेरे साथ किया कि मैं कुछ छूट वूट ना कर लूँ, इस तरीके से मैं पूरा वहाँ पे देख कर आई हूँ। लोग बड़ी तादाद में, उस वार्ड में सिर्फ महिलाएं अलाउड है, आदमी नहीं जा सकते, बड़ी तादाद में परिजन औरतें नीचे बैठी हुई हैं, एक एक बिस्तर पे मतलब मरीज ज्यादा है, बहुत ज्यादा कियोस मचा हुआ है अभी भी। हालांकि अस्पताल की सफाई इतनी, जब से गोरखपुर कोटा का पूरा मसला हुआ है तो इतनी बुराई, इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई बहुत जो तो वो सारी चीजें साफ कर ली है उन्होंने, क्योंकि मंत्रियों के विजिट्स बहुत हो रहे हैं, तो अस्पताल सफाई हो चुकी है
जी। प्रियंका,
व्यवस्था अभी भी बहुत खराब है।
बिल्कुल, आपने जो बताया कि अगर ये पिछले निचले लेवलों पे अगर थोड़े थोड़े अकोमोडेट हो जाते पेशेंट, तो यहाँ पे भी इतनी स्थिति खराब नहीं होती क्योंकि दबाव बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। श्रोताओं की राय कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। विषय है कि आखिर बच्चों की मौत के बावजूद सरकारें क्यों नहीं जागती हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हेलो
जी,
मैं मोहन सिंह काजला बोल रहा हूँ सर।
जी आपका स्वागत है।
काजला की दाणी, जिला दूधनो राजस्थान से
जी।
तो इसमें सर ये बात है, जैसे बच्चे बीमार होते हैं ना
जी जी,
तो कई बार तो जो उसके परिवार के आदमी होते हैं वो खुद ही इलाज करते हैं, फिर थोड़ा सा केस बिगड़ता है तो जोड़ा छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर 80% मतलब बच्चों की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद में वो शहर में आते हैं, हॉस्पिटल में तो टाइम लग जाता है साधन की वजह से, या जैसे पैसे की कमी से मतलब वो जल्दी नहीं पहुंच सकते, उसके बाद में वो हॉस्पिटल में जब आते हैं ना तो डॉक्टर या नर्स मतलब उसको देखने के अंदर भी काफी टाइम लग जाता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि वो जब देखते हैं तब तक मतलब काम खराब हो जाता है, उसके बाद के मान वो दुआई लिखते हैं मेडिकल पर जाओ, वो कई बार क्या पैसे भी 100-200 रुपये नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी मतलब वो क्या दुआई उनको प्राप्त नहीं मिलती है, कुछ गरीबी होती है कुछ मजबूरी होती है, फिर कई बार क्या ये दुआई है ना ये भी ओरिजिनल नहीं मिलती है, ऐसी भी शिकायत आती है क्या जैसे डुप्लीकेट दुआई है उससे भी मतलब ज्यादा काम खराब होता है। तो कहने का मतलब है सबने अपनी छाती पर हाथ धर के, नर्स होते डॉक्टर होते स्वास्थ्य मंत्री होते मुख्यमंत्री होते, ऐसा आदेश निकालना
जी जी
आपके साथ न्याय होने चाहिए।
बिल्कुल आपकी बात हम समझ रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो हमारे श्रोता थे उन्होंने कई बहुत ही व्यापक विषय कवर कर दिया, उन्होंने सबसे कहा कि माता पिता की अवेयरनेस नहीं है, झूला छाप डॉक्टर, तो कहीं सरकारी अस्पतालों के स्तर पर लापरवाही, तो कुछ माता पिता के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वो कहीं प्राइवेट अस्पतालों में जा पाए। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, लेकिन एक श्रोता को हम शामिल कर लेते हैं। जी अपना नाम बताएं।
हेलो
जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हेलो सर, मैं विलेज भर्रा मकबूलपुर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी से कृष्णानंद यादव बोल रहा हूँ।
जी कृष्णानंद जी बताएं।
जी सर, इसमें पहली बात तो ये है कि सर सिस्टम में जो टूटी फूटी सहायता सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कुपोषण है बच्चों में, और जो सरकारी मदद पहुंचाई भी जा रही है टूटी फूटी वो बंदरबांट हो जा रही है अफसरों में। और दूसरी बात ये है कि सर इसमें सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें लोगों की रिस्पांसिबिलिटी तय की जाए, जवाबदेही एक एक अफसरों की तय की जाए जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सके। और तीसरी बात ये है सर कि आरोप लगाया जा रहा है ये सरकार कर रही है तो इसलिए हम उसको जायज ठहरा रहे हैं, पहले बीजेपी में हुआ तो अब कांग्रेस में होगा।
जी कृष्णानंद जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो हो रही है। एक और श्रोता को हम कार्यक्रम में शामिल करना चाह रहे हैं, अपना नाम बताइए और जल्दी से अपनी बात रखें।
हेलो नमस्कार राठौर साहब।
नमस्ते
जी, मैं गुजरात से उस्मान गनी चौहान बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भरूच से।
जी उस्मान बताएं।
राठौर साहब, मेरी राय यह है कि हमारे देश के अंदर जो बच्चे मरते हैं वो एक अलग एक है, ठीक है वो मरते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री नेशनल वाइज भी है स्टेट वाइज भी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी अस्पतालों में जाके चेक करना चाहिए, मेडिसिन चेक करना चाहिए, डॉक्टरों को चेक करना चाहिए, डायग्नोसिस सही होता है या नहीं होता है बच्चों के बारे में, वो सारी की सारी सिस्टम फेल हो रही है, वो सिस्टम को पहले अपनी तरह ठीक करें और फिर आप बताएं कि बच्चे कैसे मरते हैं।
जी शुक्रिया उस्मान अपनी बात रखने के लिए।
साफ 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 साफ, और ये इनका स्लोगन है, कोई भी हुकूमत हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी, उनका एक ही स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चा जो होता है ना उसको बचाओ, तो बच्चा तो देश का भविष्य है, तो देश के भविष्य को
बिल्कुल
भी तो बचाना
इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। आखिर में हम एक और श्रोता को चलते चलते शामिल करते हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। जी अपना नाम बताएं।
मैं मनीष कुमार भारद्वाज खुद छात्र गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
जी मनीष जी,
मैं कहना ये चाहता था कि जो सरकार है उनको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, जब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार पैसे खर्च नहीं करेगी उनका मोटिव अगर इस पर नहीं ध्यान नहीं होगा तो इस क्षेत्र को एक महामारी के रूप में एक भारत में मानवीय आपदा के रूप में आ जाएगी। इसको सरकार को समझना होगा कि हम अपने जनता को ऐसे क्यों मरने दे रहे हैं, इसके बचाव के लिए सरकार को खर्च बढ़ानी होगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, समय बहुत कम बचा है। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हमने बातें सुन ली, सरकारें जागती हैं, कहीं पर देरी से जागती हैं, कहीं पर कोशिशें होती हैं, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है कि इतना एक साथ तुरंत भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता, और पॉलिसी के लेवल पे भी कई कमियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कभी कई कमियां हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है अगर इसको ठीक करना है, अगर हम ये चाहें कि देश में कोई भी बच्चे जो हैं वो असमय ना मारे जाएं, और बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं जो अपना दर्द नहीं बता सकते, कहाँ समस्या, बड़े तो बता सकते हैं कि क्या है, तो उनके लिए तो और देखभाल की ज़रूरत होती है, तो क्या किया जाए कि ये जो सिलसिला है जगह जगह मौतों का ये रोका जा सके। संक्षेप में
देखो दो ही चीज़ें, सबसे पहले कोई भी दिक्कत है तो मैं सोचूंगा मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले मेरे ख्याल से माँ बाप सबसे पहले अपने लेवल पे एटलीस्ट अवेयर रहें, लूज मोशन है तो मैंने क्या करना है, और हर लेवल पे अवेयरनेस अगर हम बेटर कर लें, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, आई थिंक, और हर कोई अपना काम ईमानदारी से करे, हम काफ़ी मौतें बचा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरेन गुप्ता। तो आज बीबीसी इंडिया बोल में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। कल शाम दिन भर में मिलेंगे 7:30 बजे, तब तक अजीत सारथी के साथ आदर्श राठौर को दें इजाज़त। नमस्कार, शुभरात्रि।